सुनो कहानी दिनेश दीक्षित से।
H.H. मुनरो साकी की कहानी इंटरलोपर्स का भावानुवाद भेड़िए। बात बहुत पुरानी है या कहें आज की। जंगल के पहाड़ी इलाके में राणा परिवार की लंबी चौड़ी जमीन थी। उन्होंने ढलान के कुछ जमीन पर और कब्जा कर लिया था, जो गरीब किसानों के जीने का जरिया थी। कोर्ट कचहरी हुई, फैसला गरीब किसानों के हक में हुआ। बावजूद इसके फैसले की तामील नहीं हुई, क्योंकि राणा परिवार और उनके आने वाली नस्लों ने इसे कभी माना ही नहीं। शमशेर राणा की 3 पुश्तें खप चुकी थी। बलराम राणा अब इस जमीन जंगल के वारिस थे, शिकार के बेहद शौकीन, और उससे भी ज्यादा अपनी जमीन जंगल की हद के प्रति सतर्क। उधर ढलान के गरीब किसानों की मुखियाई रामबली के हाथों थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति भीषण कटुता थी। एक दूसरे को पराजित कर बदला लेने की सनक वर्षों से सवार थी। दोनों के अपने अपने शोहदे थे, जो उनके लिए पैसों की खातिर मर मिटने को तैयार थे। एक ठंड की शाम शमशेर राणा अपने बंगलों का दरवाजा खोलकर जंगलों का निरीक्षण करने बाहर आए। साथ में भरी बंदूक उन्होंने अपने शोहदों से कहा, आज मैं अकेला ही पूरे जंगल का निरीक्षण करूंगा और देर रात कोई बड़ा शिकार करके ही लौटूंगा। ठंड के दिन थे। जंगल एक ऊंची पहाड़ी पर था, जिसके दूसरी तरफ ढलान और बस ढलान पर ही राणा परिवार के जंगल की हद थी। जंगल में वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है, फिर आज मौसम भी अनुकूल नहीं था। ठंडी हवाएं साय साय करती दौड़ लगा रही थी। पत्तियों डालियों को छूकर एक अजीब सी सिसकारी भर रही थी। पेड़ों पर रहने वाले परिंदे और छोटे जंगली जानवर डर से अजीबो गरीब आवाज पैदा कर रहे थे। ऐसे डरावने माहौल में शमशेर राणा अपनी बंदूक लिए ठीक ढलान वाले स्थान पर पहुंचे और देखते क्या है कि ठीक उनके सामने रामबली अपनी बंदूक ताने खड़े हैं। दोनों की नजरें लड़ी, आंखों में वर्षों की दुश्मनी तरोताजा हो गई। वर्षों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इसलिए इस मौके को एक आसान जीत में तब्दील करना उन्हें कबूल नहीं था। इसके पहले कि वे दोनों अपनी बंदूक का निशाना एक दूसरे पर साधते, प्रकृति ने अपनी चाल चल दी। तूफानी हवा के एक तेज झोंके से ठीक उनके ऊपर एक मोटी डाल पेड़ के तने का अधिकांश हिस्सा लेकर चरमराती हुई गिर पड़ी। दोनों प्रतिद्वंदी वहीं उस मोटी शाख के नीचे दब गए। दोनों की टांगे कमर के हिस्से तक उस भारी भरकम शाखा के प्रहार से लहूलुहान हो गई। राणा के जंगली जूतों की वजह से टांगे चूर चूर होने से तो बच गई, पर पांव की हड्डी कई जगह से चटक गई थी। कमोबेश यही हाल रामबली के पांव का भी था। पेड़ की शाखाओं से उसके माथे का अगला भाग बुरी तरह छिल गया था। खून बहकर आंखों के आगे आने लगा था। दोनों बुरी तरह से घायल थे और कराह रहे थे, पर इस सुनसान तूफानी जंगली रात में उनकी कराह और उनके दर्द को कौन सुनता। कुछ देर बाद राणा ने नजरें घुमाकर अपने प्रतिद्वंदी की तरफ देखा और कहा,
तो आखिरकार तुम मरे नहीं, जैसा होना था नहीं हुआ। चलो ये भी ठीक है कि तुम पकड़े गए, मेरे जंगल की हद में यही न्याय है। यही न्याय है।
बली ने जवाब दिया,
नहीं, मैं उसी जंगल की हद में जकड़ा हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने हमसे हड़प लिया था। कुछ देर में मेरे आदमी आएंगे, खुद देखेंगे कि तुम मेरी जमीन पर शिकार करने आए थे और पकड़े गए। तुम्हें शर्मानी चाहिए राणा। राणा ने कहा, भले तुम दावे के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे आदमी तुम्हें खोजते हुए इस तूफानी बर्फीली रात में आएंगे, वैसे मेरे आदमी भी आज जंगल में ही हैं और नजदीक भी। वो पहले पहुंचेंगे और कुछ ही देर में ये भारी डाल को काट पीट कर मुझे निकाल लेंगे। सारी कटी डालियों को तुम्हारे ऊपर ला देंगे और तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। फिर मैं तुम्हारे परिजनों को तुम्हारी मृत्यु का दुखद संदेश प्रेषित करूंगा। बलि ने कहा, मैंने अपने आदमियों को 10 मिनट का फासला रखने को कहा था, वे बस पहुंचने ही वाले हैं। राणा, ये तुम्हारी आखिरी शिकार यात्रा होगी, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारा मृत्यु संदेश कभी नहीं भेजूंगा।
राणा ने जवाब दिया,
बहुत खूब, हम दोनों इस तरह इस जंगल के लिए अपने आदमियों के साथ बाकी जिंदगी भी लड़ते रहेंगे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई मध्यस्थ नहीं।
इस तरह वे दोनों अपने अंदर सदियों से भरी क्रूरता, घमंड, ईर्ष्या और बड़ बोलेपन के साथ लड़ते रहे। ये एक अलग बात थी कि इस ठंड भरी बर्फीली तूफानी रात में किसके आदमी कब पहले पहुंचेंगे और उन्हें कौन बचाएगा। दोनों ने मन ही मन सोचा कि इस तरह लड़ने की बजाय खुद प्रयत्न करके बाहर निकलने की कोशिश की जाए, लेकिन भरसक कोशिश के बावजूद उनके ऊपर गिरी हुई वो शाख टस से मस नहीं हुई। इस कोशिश से राणा को अपने कोट की जेब से पानी की बॉटल निकालने में जरूर मदद मिली। बमुश्किल उन्होंने बॉटल का ढक्कन खोला और मुंह से लगाकर एक घूंट पानी हलक में उतार लिया। उन्हें काफी राहत महसूस हुई। उन्होंने बलि की तरफ देखा, वो ज्यादा ही जख्मी था। बाटल उसकी तरफ फेंकते हुए राणा ने कहा,
ठीक है, ये तय है कि आज रात हम दोनों में से किसी एक की मौत निश्चित है, पर तब तक तुम्हें ज्यादा तकलीफ है, तुम भी एक घूंट पानी पी लो।
बलि ने कहा,
नहीं, मेरी आंखों में खून जमने लगा है, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, वैसे मैं दुश्मन के हाथों में पानी नहीं पीऊंगा।
राणा कुछ क्षण खामोश रहे। उनके दिमाग में एक विचार आ रहा था कि बगल में पड़ा व्यक्ति किस बुरी तरह से जख्मी है, आंखें खून से जमी जा रही है, फिर भी अंदर घृणा, बदला उसे छोड़ नहीं रहा है। उसने कहा,
पड़ोसी, मैंने अपना विचार त्याग दिया है, यदि तुम्हारे आदमी पहले आते हैं तो वे तुम्हें निकाले या किसी और को, इसमें मुझे कोई रोष नहीं होगा, पर यदि मेरे आदमी पहले आए तो मैं उनसे कहूंगा कि वे पहले तुम्हें निकाले, क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। मुझे लगता है हम पूरी जिंदगी शैतानों की तरह लड़ते रहे, इस छोटे से जंगल के टुकड़े के लिए जहां के पेड़ ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते, हल्के हवा के झोंकों से धराशाही हो जाते हैं। यहां इस शाख के नीचे पड़े पड़े मैं सोच रहा हूं कि हम मूर्ख थे जो हमने अपनी जिंदगी के इतने साल इस दुश्मनी में गंवा दिए, जबकि करने को हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे काम थे। पड़ोसी, यदि तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा।
बलि काफी देर से खामोश था। राणा को लगा कि वह असहनीय दर्द से बेहोश हो गया है, पर बली ने ताकत इकट्ठी की और बोला,
हाँ पूरे इलाके के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब हम दोनों गले में हाथ डालकर बाजार की तरफ रुख करेंगे। हम अपने शहदों के बीच भी भाईचारा स्थापित करेंगे। हमारे इस काम में कोई दलाल कोई बिचौलिया नहीं होगा। मित्र, तुम शरद पूर्णिमा की रात को अपने परिवार के साथ मेरे छत पर खीर खाने आना। फिर किसी दिन मैं तुम्हारे घर अपने नाती पोतों के साथ श्रीखंड पूड़ी खाने आऊंगा। तुमने मुझे पीने को पानी दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्त।
कुछ देर दोनों शांत रहे। दोनों के दिमाग में अभूतपूर्व नाटकीय परिवर्तन हो रहे थे। दोनों मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उसके आदमी पहले आए ताकि वो दूसरे को पहले निकाल कर उसके प्रति अपना सम्मान जाहिर करे। हवा की रफ्तार कुछ समय के लिए कम हो गई थी। राणा ने कहा,
चलो हम मदद के लिए आवाज लगाएं, पर अलग अलग नहीं, एक साथ।
और दोनों ने एक साथ आवाज लगाई,
अरे कोई है, मदद करो।
बलि ने कहा फिर एक बार,
अरे कोई है, मदद करो।
दोनों की संवेद आवाज जंगल के सन्नाटे में गुम हो गई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर राणा ने कहा,
मैं कुछ साए पेड़ों के परे उतरते देख रहा हूं।
दोनों ने अपनी पूरी सामर्थ्य से फिर एक बार पुकारा,
कोई है, मदद करो, कोई है।
कुछ देर बाद राणा ने कहा, उन्होंने हमें देख लिया है, वे रुककर अब हमारी तरफ मुड़ गए हैं और तेजी से आ रहे हैं। बली ने पूछा, बतलाना दोस्त,
कितने कितने?
राणा ने कहा, ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, पर ऐसा लगता है वो 9-10 होंगे, 9-10। बली ने कहा,
फिर वो तुम्हारे लोग होंगे, क्योंकि मेरे पास तो साथी आदमी हैं।
राणा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा,
वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से हमसे मिलने के लिए।
बली ने उत्सुकता से पूछा,
क्या वो तुम्हारे आदमी है राणा? राणा बतलाओ ना, राणा क्या वो तुम्हारे लोग हैं?
राणा ने
खोखली हंसी हंसते हुए कहा, कौन है वो लोग राणा, कौन है वो लोग? बली, भेड़ियों की टोली है, भेड़िए हैं भेड़िए। हम दोनों की दोस्ती में टांग डालने वाले भेड़िए।
अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति।